सभी को शलोम बशम यीशुआ मसीह। मेरा नाम शासलो ऐसा है और आज एक बार फिर मैं आपके साथ अपने तोरा पारशा के सिलसिले को कंटिन्यू करने लगी हूँ। हम अभी तक जो है वो बरेशीत की किताब में है, यानी कि पैदाइश की किताब में है, और आज का जो तोरा पारशा है वो बरेशीत की किताब का आखिरी तोरा पारशा है। इसका नाम जो है वो वही खाए है, जिससे मुराद है वो जिया। क्योंकि मैं जब आपको तोरेत के हवाले दूंगी तो आप उसकी जो पहली आयत है उसमें आप देख सकते हैं, वल अबरानी में जो है वो ये लफ्ज़ है, मगर ये है कि उर्दू में भी आपको ये लफ्ज़ जो है वो ज़रूर लिखा हुआ नज़र आएगा, वो जिया। तो तोरा पारशा जो है वो फिर से बताती चलूं कि जो जहाँ से पारशा को पढ़ना शुरू किया जाता है, सो उसकी जो पहली आयत में जो लफ्ज होता है उसी को ही तोरा पारशा का नाम दिया जाता है। सो वो जो कि मुझे पहली बार सुन रहे हैं, मैं ज़रूर कहूँगी कि आप मेरे मैसेजेस अगर आप सुनना चाहें, या आपको पता नहीं कि मैं क्या बात कर रही हूँ, तोरा पारशा क्या है, पारशा क्या है, और मैं किस किस्म के मैसेजेस देती हूँ, तो आप मुझे जो है वो www.backtotora.com पर फॉलो कर सकते हैं, और YouTube पर मैं बैक टू तोरा के नाम से हूँ। आप मेरा नाम शासे लुइस भी जो है उससे भी मुझे सर्च कर सकते हैं, और अगर आप Facebook पर हैं तो Facebook पर बाइबल स्टडी इन उर्दू का ग्रुप है, जहाँ पर हम किताब मुकद्दस की जो किताबें हैं उनको चैप्टर बाय चैप्टर स्टडी कर रहे हैं। सो ज़रूर मुझे ज्वाइन कीजिएगा। ओके, सो आज चूंकि बरेशीत यानी कि पैदाइश की किताब जेनेसिस की किताब का आखिरी पारशा है, सो मैं आपके साथ एक दफ़ा फिर से जो है वो तमाम नाम जो है उनको दोहरा देती हूँ। बरेशीत की जो किताब है वो 12 वीकली रीडिंग्स में हफ्तावार हिस्सों में तकसीम की गई हुई है, ताकि तोरेत को जो है जैसे मैंने बताया कि हर साल ख़त्म किया जाता है, सो पैदाइश की किताब को जो है 12 हिस्सों में तकसीम किया गया हुआ है। पहला जो है बरेशीत है, जिसका मतलब है इब्तिदा में, फिर नोआख है जिसका मतलब है जो कि नाम है नू, लेख लखा है जिसके मानी है कि तुम जाओ, वही राय है जिसके मानी है कि वो जाहिर हुआ या वो नजर आया, फिर उसके बाद खये सारा है जिसका मतलब है सारा की जिंदगी, फिर तोलदोत है जिसके मानी है नसब नामा या नस्लें, फिर वही ची है जिससे मुराद है और वो गया, और फिर वही शलाख है जिसका मानी है और उसने भेजा, वही शव है, वही शव से मुराद है और वो बसा या वो रहा, फिर मेकेट्स है, मेकेट्स का मतलब है आखिर में या मेरे ख्याल में आखिर में ही है या बाद में, फिर वही गाश है, वही गाश से मुराद है और वो नज़दीक आया, और फिर है हमारा आज का तोरा पारशा जिसका नाम है वही खाए यानी कि वो जिया। और इसके लिए जो है मैं आपको कलाम मुकद्दस में से जो तोरेत के हवाले तोरे तंबिया के सहीफों में से या जो एक्स्ट्रा राइटिंग्स हैं उसमें से और नए अहदनामे के हवाले जो मैं आपको देती चलूँ, आप कलाम मुकद्दस में से इन हवालों को पढ़ेंगे। पैदाइश की किताब उसका 47वें बाब की 28वीं आयत से लेकर 50 बाब की 26वीं आयत जो कि आखिरी आयत बनती है। Genesis chapter 47 from verse 28 to chapter 50 up to verse 26. हाफ्तारा में जो है पहला सलातीन उसका दूसरा बाब पहली आयत से लेकर 12 आयत तक, First Kings chapter 2 from verse 1 to 12. मैं आपको ये जरूर बताती चलूँ कि मैं इंग्लिश में बाइबल पढ़ती हूँ, तो मैं जो मैं तनाख पढ़ रही होती हूँ, तनाख हिब्रू बाइबल को बेसिकली बोला जाएगा जो कि सिर्फ पुराना आयतनामा है, उनके और हमारी बाइबल में जो है अगर फर्क है तो वो किताबों की तरतीब का है और आयात की डिस्ट्रीब्यूशन का है कि जैसे बाज आयात जो है वो हो सकता है कि हमारे कलाम मुकद्दस में जो है वो उस तरह से ना आपको नजर आए. सो कंफ्यूज मत हो, मैं जानती हूँ कि बाज बातें जो है वो कंफ्यूजन पैदा करती हैं क्योंकि खास तौर पे मैं अगर उर्दू बाइबल को जो उस तरह से चेक नहीं कर रही हूँ तो मुझे भी बाज का जो है वो पता नहीं चलता कि ओके ये जो है ये वाली जो आयत जो है ये हमारा दूसरा बाब नहीं बनता बल्कि तीसरा बाब बनता है. सो उस तरह से बाज का जो है वो गलती हो जाती है मेरे से, तो उसके लिए मैं जरूर माफी चाहती हूँ. मगर अगर आपको कोई गलती लगे तो आप मुझे जो है वो उसके बारे में जरूर पूछ सकते हैं और खुदावन ने चाहा तो खुदावन की रूह जो है वो भी आपको खुद भी गाइड करेगी कि आप जो है वो उसको उसको जो है वो करेक्ट कर सकें. अभी तक मुझे लोगों ने मैसेज नहीं किया है, हालांकि एक आध दफ़ा जो है वो मेरे से ऐसे हो चुका हुआ है. सो मैं समझ सकती हूँ कि बहुत से लोग जो हैं वो शायद मेरे ऑडियो मैसेज को सुनते हैं मगर वो जो है वो कलाम मुकद्दस मैसेज है वो खुद इन बातों को इन हवालजात को नहीं पढ़ रहे, सो इसलिए उनको कभी कोई गलती नहीं लगी. बट एनीवे नए अहदनामे में यानी कि ब्रित खदाशा से आप पहला पत्रस उसके पहले बाब की नौ आयात पढ़ेंगे. फर्स्ट पीटर एक्चुअली तीसरी आयत से नामी आयत तक, सॉरी फर्स्ट पीटर चैप्टर वन फ्रॉम वर्स 3-9 और फिर उसके बाद हीब्रूज चैप्टर 11 वर्स 21-22, अब्रानियों का खत उसके 11 बाब की 21वीं और 22वीं आयत. सो हमेशा की तरह जो है मेरे लिए हमेशा चैलेंज जो है वो ये होता है कि मैं आज किसके ऊपर बात करूं. और पैदाइश की किताब का जो है अगर आपने इन हवालों को जो है वो कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे तो आपको 49 बाब में जो है वो याकूब का अपने बेटों को बरकत देने का हवाला नजर आएगा. 49 बाब में, सॉरी 49 चैप्टर में. तो उस और उसमें जो है वो इतनी अच्छी बातें हैं, पेशेंट गोई हैं और मेरा दिल जो था वो उन पेशेंट गोइयों पर बात करने को कह रहा था. मगर फिर मुझे ख्याल आया कि मुझे अपने इस साल के तौर पारशा को जो है वो सिर्फ और सिर्फ रूहानी पैगाम तक रखना है कि मैं उसमें से जो उस रूहानी पैगाम को आपके साथ शेयर कर सकूं, क्योंकि तौरात का जो तमाम का तमाम मकसद है या बाइबल जो हमारे पास है उसका मकसद जो है वो हमारी जिंदगी को संवारना है. सो हमारे लिए जो है इसमें क्या पैगाम है. और मैं जब उसको देख रही थी तो मेरे जहन में जो था एंड में जो था जब मैं आयात को देख रही थी तो मेरे जहन में पैदाइश का 50 बाब उसकी 16वीं आयत का मुझे ख्याल आया. मेरे साथ 16वीं और 17-18 आयात तक जो मैं आपके साथ पढ़ने लगी. Genesis chapter 50 from verse 16. यहाँ पर जो है वो यूं लिखा हुआ है, सो उन्होंने यूसुफ को ये कहला भेजा कि तेरे बाप ने अपने मरने से आगे ये हुक्म किया था कि तुम यूसुफ से कहना कि अपने भाइयों की खता और उनका गुनाह अब बख्श दे क्योंकि उन्होंने तुझसे बदी की. सो अब तू अपने बाप के खुदा के बंदों की खता बख्श दे. और यूसुफ उनकी ये बातें सुनकर रोया और उसके भाइयों ने खुद भी उसके सामने जाकर अपने सर टेक दिए और कहा देख हम तेरे खादम हैं. अगर एक्चुअली 19वीं और 20वीं आयत को भी मैं आपके साथ जो 21वीं आयत तक जो मैं पढ़ देती हूँ. यूसुफ ने उनसे कहा मत डरो, क्या मैं खुदा की जगह पर हूँ? तुमने तो मुझसे बदी करने का इरादा किया था लेकिन खुदा ने उसी से नेकी का कसद किया ताकि बहुत से लोगों की जान बचाए. चनानचे आज के दिन ऐसा ही हो रहा है, इसलिए तुम मत डरो. मैं तुम्हारी और तुम्हारे बाल बच्चों की परवरिश करता रहूंगा. यूं उसने अपनी मुलायम बातों से उनकी खातिर जमा की. मैं जब भी माफी के बारे में सोचती हूँ क्योंकि इसमें जो है वो मुझे माफी का पैगाम नजर आता है और माफी जो है मैं जब भी किसी को माफी देने के बारे में सोचती हूँ तो मेरे जहन में जो है वो हमेशा एक चीज आती है कि माफी उन्हीं को दी जाती है जो कि माफी के काबिल नहीं होते, और उनमें से जो है एक मैं भी हूँ। मैं भी माफी के काबिल नहीं थी मगर खुदावन ने मुझे माफ किया। जब मैं इन आयात को देख रही थी, और अगर आप थोड़ा सा पीछे जाए जहाँ पर यूसुफ ने जो है वो अपने भाइयों के सामने जो है अपने आप को एक्सपोज किया है, अपने आप को अपना नकाब मिस्रियों का नकाब उतार के फेंका है, तो यूसुफ ने जो है जब उनसे बात की तो यूसुफ ने जो है वो उनको ये नहीं कहा कि मैंने तुम्हें जो है वो माफ किया। उसके भाइयों ने ये नहीं कहा कि तू हमें माफ करते कि हमने जो है तेरे खिलाफ बदी की, हमने तुम्हारे तेरे साथ ऐसा किया, हमें जो है वो माफ कर देना। नहीं, ऐसा जो है वो आपको जो है वो बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा, बल्कि उसकी जगह जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो ये नजर आएगा। मेरे साथ जो है अगर आप 45वें बाब, पैदाइश का 45वां बाब और उसकी चौथी आयत से अगर आप पढ़ना शुरू करें तो आपको आगे चंद आयात तक जो है वो नजर आएगा कि उनमें से किसी यूसुफ ने भी उनसे जिस तरह से बात की थी उसमें जो है वो ऐसा नहीं है कि यूसुफ ने कहा हो कि मैंने जो है वो तुम्हें माफ किया। जेनेसिस चैप्टर 45, मैं वर्स 4 से जो पढ़ना शुरू करने लगी हूँ, चौथी आयत से, यहाँ पर लिखा हुआ है, और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा जरा नजदीक आ जाओ, और वो नजदीक आए, तब उसने कहा मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ जिसको तुमने बेचकर मिस्र पहुंचवाया, और इस बात से कि तुमने मुझे बेचकर यहाँ पहुंचवाया ना तो गमगीन हो और ना अपने अपने दिल में परेशान हो, क्योंकि खुदा ने जानों को बचाने के लिए मुझे तुमसे आगे भेजा, इसलिए कि अब 2 बरस से मुल्क में काल है और अभी 5 बरस और ऐसे हैं जिनमें ना तो हल चलेगा ना फसल कटेगी, और खुदा ने मुझे तुमको मुझको तुम्हारे आगे भेजा ताकि तुम्हारा बगैया जमीन पर सलामत रखे और तुमको बड़ी रहाई के वसीले से जिंदा रखे, बस तुमने नहीं बल्कि खुदा ने मुझे यहाँ भेजा, और उसने मुझे गोया फरून के बाप का बाप और उसके सारे घर का खुदावंद और सारे मुल्क मिस्र का हाकम बनाया। अगर आप इन आयात को आपने आपने ध्यान दिया है तो उसके बाद भी जो है वो आपको कहीं पर भी जो है वो नजर नहीं आया होगा कि कहीं पर भी जो है वो माफी की बात हुई है। और अब जबकि इस तोरा पारशा में जो है हम पढ़ते हैं कि याकूब जो है वो तो जिंदा नहीं रहे और उनके जो यूसुफ के जो भाई जो हैं वो अब डर गए हैं कि अब तो यूसुफ जो है वो उसके पास तमाम अख्तियार है, यूसुफ जो है वो अगर हमें कैद करना चाहे, हमें मारना चाहे क्योंकि हमने उसके साथ बदी की थी, तो वो जो है वो ऐसा कर सकते हैं। एक और चीज जो है वो मैं आप लोगों के साथ इस तोरा पारशा में जो यहाँ पर वो मैं क्लियर करती चलूँ वो ये है कि काफी साल पहले जो था मैं अभी यही सोचती थी कि क्योंकि जिस तरह से मुझे सिखाया गया था या मैंने जाना था तो मैंने भी वैसी तालीम देना शुरू की थी कि मदयानी और इस्माइली जो है वो दोनों तजारत का काम करते थे, सो इसलिए जो है वो तजारती जो 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 अल्फाज जो हैं वो अदल बदल कर इस्तेमाल हुए हैं। सो जब यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को घड़े में डाल दिया तो उन्होंने जो था इस्माइलियों का जो काफला था उसको देखा था, और वो जो थे उन्होंने उनको यूसुफ को बेचने का फैसला किया था, मगर बाद में जो है वो हम ये पढ़ते हैं कि मदयानी सौदागर, अगर आप मेरे साथ पैदाइश का 37वां बाब 37 चैप्टर अगर मैं उर्दू में गलत बोल रही हूँ तो मुझे माफ कीजिएगा, उम्मीद है कि सही है। 37वां बाब और उसकी 28वीं आयत। सो यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है, फिर वो मदयानी सौदागर उधर से गुजरे, तब उन्होंने यूसुफ को खींच कर कड़े से बाहर निकाला और उसे इस्माइलियों के हाथ 20 रुपए को बेच डाला और वो यूसुफ को मिस्र में ले गए। सो ऐसे जो है वो लगता ऐसे है कि भाइयों ने बेच डाला है, मगर वहां पर जो है वो भाई नहीं है जिन्होंने उसको घड़े से निकाला है। मदयानी और इस्माइली जो थे वो तजारत का काम तो करते थे, मगर ये है कि अगर उन्हें कुछ चोरी करके कुछ हासिल करना पड़ता था, या जैसे आपने शायद मूवीज में देखा हो कि कैसे काफिलों को जो था वो लूट लिया जाता था और फिर आगे उस माल को जो था, लूट के माल को जो था आगे बेच दिया जाता था। सो मदयानियन ने क्या किया कि उन्होंने जो था यूसुफ को की आवाजें सुनकर जो था शायद इस वजह से जो था उन नजर आया कि यूसुफ जो है वो तो घड़े में गिरा पड़ा हुआ है, और वो जो घड़े जो थे वो उस मकसद ही के लिए बनाए गए हुए थे कि पुराने टाइम में जो था वो जमीन में एक बड़ा सा घड़ा खोद देते थे और फिर जो जिसको कैद में डालना होता था उसको उस घड़े में फेंक देते थे। सो यूसुफ के भाइयों ने जो है वो उस किस्म के एक घड़े को इस्तेमाल किया, और मदयानियों ने क्या किया कि उसमें से जो, जबकि यूसुफ के भाई जो थे वो तो खाना खाने दूर बैठे हुए थे ताकि उन्हें जो है वो यूसुफ के रोने की, चीखने चलाने की आवाज ना आए, तो वो दूर बैठे हुए थे। और यही एक वजह है कि जब वो तमाम भाई जो है वो वापस गए, जब रूबन जो है वो घड़े पर लौटा तो उसने जो था वो यूसुफ को नहीं वहां पर पाया, क्यों? क्योंकि मदयानियों ने जो था यूसुफ को वहां से जो था वो चुरा लिया। और फिर जब फिरौन के सामने यूसुफ को पेश किया गया तो वो जो है वो फिरौन से पहले जो है जब वो उन लोगों से बात कर रहा है जो कि जो जो फिरौन के गुलाम थे, यानी के एक जो था वो साकी था और एक जो था वो रोटी बनाने वाला था, तो उनमें से उनको जो था वो यूसुफ ने जो था वो ये कहा कि मुझे जो है वो मेरे बाप के घराने से जो है वो अलहदा कर दिया गया। मैं उस हवाले को जो आपको बताऊं, अगर आप मेरे साथ जो है पैदाइश की किताब उसका 40वां बाब और उसकी 15 आयत को देखें, जेनेसिस चैप्टर 40 वर्स 15, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि इब्रानियों के मुल्क से मुझे चुरा कर ले आए हैं और यहाँ भी मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके सबब से कैद खाने में डाला जाऊं। सो यूसुफ को जो था वो उसके बाप के घर आने से चुरा लिया गया था, वो चुराने की बात कर रहा है, वो जान गया था कि भाइयों ने तो उसके साथ जो था वो मजाक में शायद मजाक किया हो या उससे में जो है उन्होंने उसको जानबूझकर जो है वो घड़े में फेंका हो, मगर वो जानता था कि वो जो है वो गुस्सा था, मगर आगे जो है उसको चुराने वाले जो हैं और फिर आगे जो है गुलामी में बेचने वाले जो हैं वो फर्क है, और वो कौन थे? वो मदयानी थे। मदयानी जो थे उन्होंने उसको घड़े से निकाला और फिर आगे जो है वो इस्माइलियों के हाथ जो है गुलामी में बेच डाला। सो ये जो है ये एक वो बात है जो कि अक्सर हम लोग जो है वो नहीं सोचते हैं कि यूसुफ को गुलामी में बेचने वाले उसके भाई नहीं थे बल्कि मदयानी थे जिन्होंने उसको चुराया। सो तभी यूसुफ जो है वो उनसे यूं बात कर रहा है कि वो जो है वो उन्होंने तो उससे बदी की, मगर खुदाबंद ने जो है वो उस बदी को जो है अच्छाई के लिए इस्तेमाल किया। और अगर हम भाइयों की तरफ से सोचें तो भाई जो है वो जानते हैं कि उन्होंने जो है वो यूसुफ से जो है वो उस तरह से माफ़ी नहीं मांगी है, और इसीलिए जो है उनका जो दिल जो है वो उन्हें इस बात पर परेशान कर रहा है, और तभी जो है वो उन्होंने अपने बाप के मरने के बाद जो है वो यूसुफ से जो है बजाय इसके कि अपने اپنے گناہ کا جو ہے وہ پراپرلی اقرار کریں. وہ جو ہے وہ اپنے باپ کا واسطہ دے کر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے بھائیوں کی خطا اور ان کا گناہ جو ہے وہ اب بخش دینا. سو اس میں بھی جو ہے وہ ایک جو پیشن گوئی جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے, مگر میں اس کے اوپر بات نہیں کروں گی کیونکہ وہ وقت آئے گا جب یہودی جو ہے وہ یشوع سے جو ہے وہ اس بات کی معافی جو ہے باپ کے وسیلہ سے جو ہے وہ معافی مانگیں گے. مگر ایسا ہے کہ اگر ہم یشوع کی تعلیم کو دیکھیں تو یشوع کی تعلیم جو ہے اس میں بھی جو ہے وہ معافی کا جو پیغام جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. کلام مقدس میں جو ہے ہمیں جو ہے وہ پہلا یوحنا اس کے پہلے باپ کی نامی آیت میں جو ہے وہ یہی لکھا ہوا ملتا ہے کہ اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے میں سچا اور عادل ہے. پھر ساتھ ہی میں جو ہے ہمیں یشوع کی جو تعلیم ہے دعائے ربانی جو ہے وہ یہ سکھاتی ہے کہ اگر ہم دوسروں کو جو ہے معاف نہیں کر رہے ہیں تو ہمارا آسمانی باپ بھی جو ہے ہمیں معاف نہیں کرے گا. کیونکہ ہم دعائے ربانی میں بولتے ہیں کہ تو ہمارے گناہ ہمیں معاف کر جیسے ہم اپنے قصور والوں کو معاف کرتے ہیں. سو سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم واقعی میں جو ہے وہ اپنے قصور والوں کو معاف کرتے ہیں؟ اور میرا خیال میں کسی کے ساتھ جس کے ساتھ بدی ہوئی ہو اس کے لیے جو ہے وہ معاف کرنا جو ہے سب سے مشکل کام ہے. اور ہم میں سے اکثر جو ہیں وہ اس مرحلے سے گزرتے ہیں. مگر یاد رکھیں کہ معافی دینے کی نوبت جو ہے وہ تبھی آتی ہے جب آپ کے ساتھ جو ہے کسی نے کوئی بدی کی ہو یا کسی نے جو ہے وہ آپ کی بات جو ہے وہ نہ سنی ہو, آپ کے جو ہے دل دکھایا ہو. اور معافی جو ہے وہ اسی صورت میں دی جاتی ہے. سو امید ہے کہ جب آپ اس تورا پارشا کو پڑھیں گے, کلام مقدس میں سے ان حوالوں کو پڑھیں گے, تو آپ جو ہیں وہ ان تمام باتوں کو جو ہیں وہ ضرور دھیان میں رکھیں گے کہ ماں کلام مقدس جو ہے وہ شروع سے ہی جو ہے وہ ہمیں معافی کا درس دیتے آئی ہے. اور کہنے کو تو میں آپ کے ساتھ بہت سی کلام مقدس میں سے آیات کو شیئر کر سکتی ہوں, مگر پتہ نہیں کیوں ابھی میرے ذہن میں جو ہے وہ کلسیوں کا تیسرا باب اور اس کی 13 آیت میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں. یہاں پر جو ہے وہ یوں لکھا ہوا ہے, کلوشنز چیپٹر 3:13, اگر کسی کو دوسرے کی شکایت ہو تو ایک دوسرے کی برداشت کرے اور ایک دوسرے کے قصور معاف کرے, جیسے خداون نے تمہارے قصور معاف کیے ویسے ہی تم بھی کرو. سو کلام مقدس جو ہے وہ ہمیں ایک دوسرے کو نہ صرف برداشت کرنے کو کہتا ہے بلکہ قصور معاف کرنے کو کہتا ہے. کیونکہ ساتھ ہی میں جو ہے وہ ہمیں یہ بھی یاد دلایا جاتا ہے کہ خداوند نے بھی ہمارے قصور جو ہیں ویسے ہی معاف کیے ہیں, ہمیں بھی جو ہے آگے سے ویسے ہی دوسروں کے ساتھ کرنا ہے. اور یشوع کے مصلوب ہونے میں جو ہے یہ جو ہے یہ ہمیں ضرور دکھائی دیتا ہے. سو امید ہے کہ آپ ان تمام باتوں پر ضرور غور کریں گے. آپ سبھی کو شلوم. خداوند نے چاہا تو اگلی دفعہ جو ہے ہم شموت سے یعنی کہ خروج کی کتاب سے اپنے تورا پارشا کے سلسلے کو کنٹینیو کریں گے. خداوند آپ سبھی کے ساتھ ہوں. آپ سبھی کو شلوم.